ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण सातवां स्कंद अध्याय आठ, भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध, श्लोक संख्या 41। विष्णु पंखा बंद करो। श्री रुद्रावाच कोपकालो जुगान्तते हतोयम् असुरो अल्पका तस्सुतं पाहि उपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सला। कोपकालो जुगांस्ते कोपकालो जुगान्तस्ते हतोयम् असुरो अल्पका तस्सुतं पाहि उपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सला। श्रीरुद्र उवाच कोपकालो जुगान्तस्ते हतोयम् असुरो अल्पका तस्सुतं ह्या उपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सला। माताजी शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री रुद्र उवाच शिव जी ने स्तुति की। कोपकाल ब्रह्मांड का संहार करने के लिए आपके क्रोध का उचित समय जुगंतम जुगंत कल्प का अंत ते आपके द्वारा हता मारा गया अयम यह असुर महान दैत्य अल्पक नगण्य तुच्छ तस्सुतम उसके पुत्र की प्रहलाद महाराज की पाही रक्षा करें उपस्थितम शरणागत होकर पास ही खड़ा है भक्तम भक्त भी है ते आपका भक्तवत्सल हे भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल प्रभु शिव जी ने कहा कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकश्यपु मारा जा चुका है जय श्री श्री गौर निताय राधारास बिहारी सीताराम हनुमान की जय अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकश्यपु मारा जा चुका है हे भक्त वत्सल प्रभु कृपा करके उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं सृष्टि में तीन प्रक्रम होते हैं सृजन पालन तथा अंत में संहार संहार के समय प्रत्येक युग के अंत में भगवान क्रुद्ध होते हैं और यह क्रुद्ध होने का कार्य शिव जी द्वारा संपन्न होता है अतएव वे रुद्र कहलाते हैं जब भगवान हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए अत्यंत क्रुद्ध हुए तो सभी लोग उनकी मुद्रा को देखकर भयभीत थे लेकिन शिव जी भयभीत नहीं हुए क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि भगवान का क्रोध भी एक लीला है उन्हें पता था कि उन्हें ही भगवान के क्रोध की भूमिका निभानी पड़ेगी काल का अर्थ है शिव जी भैरव तथा कोप का अर्थ है भगवान का क्रोध इन दोनों के संयोग से निर्मित कोपकाल का प्रयोग प्रत्येक कल्प के अंत में हुआ है भगवान भले ही अत्यंत क्रुद्ध क्यों न प्रतीत हों वास्तव में वे अपने भक्तों के प्रति सदा वत्सल रहते हैं चूंकि वे अव्ययात्मा हैं अर्थात वे कभी च्युत नहीं होते अतः वे क्रुद्ध रहने पर भी भक्तों के प्रति वत्सल बने रहते हैं अतएव शिव जी ने भगवान को याद दिलाया कि वे प्रहलाद महाराज के प्रति पितृतुल्य वत्सल बने जो उनकी बगल में विनित शरणागत भक्त की तरह खड़े थे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जिनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः भूतैर्महद्वीयैमा पुरो विभो निर्माय सेते यदमोऽसु पुरुषम् भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् शूलम कृषिष्टम भगवन् वचांसि मे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च त्रिवासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज फर्स्ट क्लास के प्रचारक हैं। वे ऐसे प्रचार किए कि जितने असुर बालक थे सब के सब भक्त बन गए और सब लोग कृष्ण भावना भावित बात करना प्रारंभ कर दिए। यही भक्त का लक्षण है। जो भक्त हो जाता है वो नित्य निरंतर कृष्ण संबंधी वार्ता करता है और उसी में आनंद का अनुभूति प्राप्त करता है। मच्चीत मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। लेकिन हम लोग अभी भक्त नहीं बने हैं। हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को उसमें आनंद नहीं आता है। और जब प्रजल्प होना शुरू होता है तो सब काम छोड़ करके सुनते हैं क्या बात हो रहा है। आनंद आना चाहिए जहां पर कृष्ण संबंधी वार्ता होती हो, लेकिन वहां आनंद नहीं आता है। आनंद कहां आता है? विष्णु सोने में, विष्णु बोलता है। जहां प्रजल्प होती है वहां आनंद आता है। तो ये प्रमाणित करता है कि हम लोग बहुत नीचे स्तर पर हैं। वो असुर बालक भी हमसे बहुत ऊंचे स्तर पर थे और वे लोग ऐसा कृष्ण वार्ता कर रहे थे, ऐसा कृष्ण वार्ता कर रहे थे कि उनके टीचरों का नींद हराम हो गया था। संड और अमर का नींद हराम हो गया था, खाना पीना बंद हो गया था। इतना वे भयभीत हो गए थे कि बाप रे बाप, ये सब भगत बन जाएंगे, महाराज हिरण्यकश्यपु को पता चल जाएगा तो हम लोगों का खटिया खड़ा बिस्तर गोल सब है, किसी काम के कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग, बड़ा परेशानी होगी। तो वे लोग बड़े सेफ प्ले किए, प्रोएक्टिव हुए और जाकर के हिरण्यकश्यपु से सब बात बता दिए और कहे कि महाराज ये सब बालक उतने खराब नहीं थे, ये सब तो वही पढ़ रहे थे जो हम पढ़ा रहे थे, लेकिन जब से आपका ये नालायक बेटा आया हुआ है सब गड़बड़ कर दिया। यही उन लोगों का मति खराब कर दिया। अब सब के सब लड़के आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, अब हमारा बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं लड़के, आप ही कुछ कीजिए। तब हिरण्यकश्यपु और कुछ करने आए और वे बालकों को न समझा करके प्रहलाद को समझाना प्रारंभ किए। तो प्रहलाद महाराज तो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं। जो कृष्ण भावना भावित होता है वो सत्य बोलने में कभी डरता नहीं है, कभी हिचकता नहीं है। जो सत्य बोलने में हिचकता है इसका मतलब उसमें कोई भय है, और भय तब होता है जब कृष्ण वहां पर नहीं होते हैं। जब कृष्ण होंगे तो कोई भय नहीं होगा, भय भी कृष्ण से कांपता है। कृष्ण के पास भय नहीं जाता है, डर तब होती है जब कृष्ण न हो। इसीलिए जो व्यक्ति डर से मुक्त होना चाहता है उसे नित्य निरंतर कृष्ण को, कृष्ण के सान्निध्य में रहना चाहिए, कृष्ण के छाया में रहना चाहिए। कृष्ण के छाया में रहेंगे तो किसी प्रकार का डर नहीं होगा। जैसे प्रहलाद जी को डर नहीं था, जिस हिरण्यकश्यप से सब कांप रहे थे, इंद्र आदि देवता भी कांप रहे थे, जो लोग भयभीत थे, छोटा 5 साल का बालक बिल्कुल भयभीत नहीं था। और प्रहलाद महाराज कृष्ण भावना भावित प्रचार किए, हिरण्यकश्यप को खूब प्रचार किए, अच्छा तरह प्रचार किए के, और अंत में कहते हैं कि आप मेरे पिताजी हो, इसलिए मैं हाथ जोकर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस आश्रित प्रवृत्ति को त्याग दीजिए और चलिए हम सब लोग बाप बेटा मिलकर के भगवान का भजन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम सब लोग भगवान का भक्त बन जाए, आप भी बन जाइए पिताजी, अच्छा होगा। छोटे बच्चे कभी कभी अच्छा बात बोलते हैं, इसलिए छोटे बच्चों का बात जो होता है उसे टाल नहीं देना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे निश्चल होते हैं, उनमें कोई कपट नहीं होती है, कोई छिपाने की बात नहीं होती है, अस्पष्ट जो बात होती है वही वे करते हैं, कुछ छिपाते नहीं है। इसीलिए छोटे बालकों का बात लोग सत्य मानते हैं, स्वीकार करते हैं। आज भी कोर्ट भी स्वीकार करता है, उसके लिए प्रमाण की छोटा बालक यदि कुछ कह दे तो कोर्ट भी स्वीकार करता है। बड़ा व्यक्ति कहता है तो उसके लिए प्रमाण चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कोई प्रमाण नहीं होता है, निश्चल होते हैं छोटे बच्चे। और उसमें भी यदि कोई कृष्ण का भक्त हो तो कहना ही क्या है, जैसे प्रहलाद महाराज। तो जो बात प्रहलाद महाराज कहे हैं हनुमान जी वो बिल्कुल सत्य बात कहे हैं, और जो अपने पिताजी को सलाह दिए हैं वो भी सही सलाह दिए हैं। हित्वा तपातम गृह अंधकूपम मनोगतम यद हरिमाश्रय, तो चलिए पिताजी भगवान का शरण लिया जाए, भगवान का भजन किया जाए, ये सबसे अच्छा चीज है। आप क्लास सुन रहे हो कि सिनेमा का गाना सुन रहे हो? निकाल कर सुनो, भगवान ने कान दिया, कान में ठूस लिया हो कुछ, निकालो उसको, अब सुनो। ना ना ना, ऐसे ही सुनो, पता नहीं क्या सुन रहे, मैं थोड़ी देख रहा हूं क्या सुन रहे हो। नहीं नहीं, वो छोड़ो, निकालो, वो हिंदी अनुवाद तो करने की जरूरत क्या, मैं हिंदी बोल रहा हूं, अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, और उधर अंग्रेजी अनुवाद हो नहीं रहा है। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था, चलो सुना तुम बताओ। आए? फिर लगा रहा है, बोला नीचे रखो, ये आदत पड़ गई इसको लगाने का। इसमें वो पहले बोल दिया था, लास्ट में क्या बोल रहा था, आए? कोर्ट भी स्वीकार कर लेता है छोटे बच्चों का बात। और प्रहलाद महाराज तो बिल्कुल भक्त थे, सत्य बात कह रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसे लोगों को, हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो आफ्रिक प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे लोग शत्रु और मित्र का पहचान क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई हमारे इंद्रिय तृप्ति में सहयोग कर रहा है तो वो हमारा मित्र है, और जो हमारे इंद्रिय तृप्ति में बाधा बन रहा है, चाहे अपना ही क्यों न हो, वो शत्रु हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के इंद्रिय तृप्ति में बाधा बन रहे थे, इसलिए हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को अपना शत्रु मान करके शत्रुवत व्यवहार करने लगा। उनको मारने का खूब प्रयास किया, सब प्रकार से प्रयास किया, लेकिन जब सब प्रकार से विफल हो गया, नहीं मार पाया, तो स्वयं अपने हाथ से मारने का ठान लिया और प्रहलाद महाराज से चैलेंज किया कि तू कहता है, बकवास कर रहा है कि भगवान तुम्हारे सब जगह हैं, यदि हैं तो क्या इस खंभे में भी हैं? तो प्रहलाद ने कहा, इस खंभे में भी है, निश्चल भाव था और बोल दिए सत्य बात को। तब हिरण्यकश्यपु का चित्र दिखाता हूं, तुम्हारा भगवान खंभे में है, और खंभा को अपने गदा से तोड़ दिया और भगवान नरसिंह देव वहां पर प्रकट हुए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्यम विधातु निजवित्त भाषितम, सत्यम विधातु टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ हिज डिवोटी, अपने भक्त के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभे से बाहर है। कहीं से आ सकते थे भगवान, खंभा से नहीं, जरूरत क्या था? लेकिन प्रहलाद महाराज के बात को सत्य करने के लिए, कि प्रहलाद जी जो जो अब तक से बात कहे हैं सब बात सत्य है, ये अंतिम बात हिरण्यकश्यपु पूछा था प्रहलाद जी से। उसे पहले जितना प्रहलाद जी कहे थे सभी बातों को सत्य करने के लिए, और इस अंतिम बात को भी सत्य कहते हैं, अंत भला तो सब भला। अंतिम बात प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु और कहे, हां भगवान वहां भी है। तो उनके स्टेटमेंट को, उनके कहे गए बात को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभे से प्रकट हुए, और इस प्रकार से लड़ाई प्रारंभ हुआ हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान में। नरसिंह भगवान पहले खेल खेल रहे थे और खेल खेल में ही उसको थोड़ा सीरियस हो गया खेल। कभी कभी जब बच्चे खेल खेलते हैं और जब थोड़ा सीरियस हो जाता है खेल, तो खेल लड़ाई के रूप में परिवर्तित, पहले खेल होता है लेकिन सीरियस होता है, दूसरा मारता है जोर से, झापड़ चोट लग गया थोड़ा तो कहता बदमाश है, हमको मार रहा है, खेल नहीं रहा है, तो दूसरा भी गुस्सा होता है, फिर शुरू हो जाता है। तो पहले भगवान खेल रहे थे, बाद में वह खेल लड़ाई के रूप में, और यह लड़ाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। देखिए, किसी को मारने के लिए गुस्सा बहुत जरूरी है, यदि गुस्सा नहीं होगा तो हम किसी को मार नहीं सकते हैं। क्या मार सकते हैं? किसी को झापड़ मारना है, गुस्सा नहीं है तो ऐसे करेंगे, कोई बात नहीं, और गुस्सा होगा तो जोर से दबा करके मारेंगे, ये करेंगे ना। अर्जुन को गुस्सा नहीं हो रहा था, इसीलिए भगवान गीता का उपदेश सुना है कि अर्जुन थोड़ा गुस्सा हो, जब तक से गुस्सा नहीं होगा तब तक से मारपीट नहीं होगा। गुस्सा का इंपॉर्टेंट अवयव है, सॉरी, मारपीट का इंपॉर्टेंट अवयव है गुस्सा होना। किसी प्रकार से गुस्सा हो जाए, गुस्सा कैसे भी हो सकता है, गाली गलौज से भी गुस्सा हो सकता है, चिढ़ाने से भी गुस्सा हो सकता है। हमारा अमीर रस प्रभु दो दिन पहले आया और कह रहा है कि प्रभु, अनिरुद्ध प्रभु हमको बहुत चिढ़ा रहे हैं, हमारा जीना हराम कर दिए हैं। अनिरुद्ध कहां है ना? अनिरुद्ध चिढ़ाओ मत, मैं सबके सामने बोल रहा हूं, तू मजाक ज्यादा कर रहा है कीर्तन में आजकल, चिढ़ा रहा है। तो चिढ़ाना गुस्सा का जड़ होता है, चिढ़ाना भी गुस्सा की जननी होती है, कहीं ऐसा ना हो कोई झापड़ दे दे तो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, तुम चिढ़ाओ मत, मैं नहीं कह रहा हूं, इस शास्त्र कहता है कि वो गुस्सा के कई एक नाती पोते हैं, उसमें से चिणाना भी है। तुम अपने अनुसार अच्छा कर रहे हो लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करो। अमीरस कहा है ना, सबके सामने कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं चिणाएगा। तो चिणाना भी गुस्सा का कारण होता है, गाली गलौज करना गुस्सा का कारण, बहुत कारण होते हैं गुस्सा के। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव को गुस्सा आ गया था, बदमाश कहीं का, भक्त को परेशान किया, प्रहलाद को, देवताओं को परेशान किया, ब्रह्मा जी को परेशान किया, सबको परेशान किया, मुझे आना पड़ा और तू मुझसे भी अपने को बड़ा चालाक समझता है, जा मारे भगवान उसको। उसको मारे, उसके बाद में और के जितने चेला चपाटी थे, समझे गोपाल, चेला चपाटी का मतलब समझते हो, डिसाइपल उसके फॉलोअर, सब लोगों को दबाकर मारे भगवान। अब कोई आगे नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी एक कान में लगाकर सुन रहा है। लाओ तो मैं थोड़ा सुनता हूं, इधर लाओ, ना ना मैं थोड़ा सुनता हूं, तेरे को कैसे सुनाई पड़ता है ना। हाँ अब तुम बैठो। ये समयता नहीं है, पता नहीं क्या समझाया जाए इसको, तू भी सुन रहा है क्या, नीचे रख दो। हाँ क्या हो रहा था, सब चेले चपाटी मारे गए, अब कोई नहीं था आकर के भगवान नरसिंह देव के समक्ष खड़ा हो लड़ाई करे, तो सिंहासन खाली पड़ा हुआ था। भगवान जाकर बैठ गए, फुफकार रहे थे गुस्सा में, गुस्सा शांति नहीं हो रहा था। अब गुस्सा, भगवान के गुस्सा को शांत करने के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ब्रह्मा जी प्रार्थना किए पहले, एनीवे आई विल रीड फ्यू श्लोक। अपना पूर्ण तेज था भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिंह देव अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर सभा भवन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस न हुआ कि सामने आकर भगवान की सेवा करे। हिरण्यकश्यप तीनों लोगों का सिरदर्द बना हुआ था, अतएव जो स्वर्गलोक में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों से हो गया है और उनके चेहरे प्रसन्नता के मारे खिल उठे। देवताओं की स्त्रियों ने स्वर्ग से भगवान नरसिंह देव पर पुनः पुनः पुष्पों की वर्षा की। उस समय परमेश्वर नारायण का दर्शन करने के इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश पट गया। सबका अपना अपना फ्लाइट था लगता है, सभी देवताओं का पर्सनल प्लेन था, सब उड़ करके आ रहे थे। देवतागण ढोल तथा नगाड़े बजाने लगे, जय श्री श्री गौर नित्याय राधा रस विहार रामचंद्रमान की जय, जिन्हें सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों की मुखिया मधुर तान में गाने लगे। तो इस प्रकार से जब बदमाश लोगों को दंड दिया जाता है या मरते हैं तो साधु पुरुष भी खुश होते हैं, सांप को मार दिया जाए तो द्वेषी व्यक्ति हिरण्यकश्यप से बदमाश लोग मारे जाए तो भक्त लोग भी उसमें आनंद उठाते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, तब सारे देवता भगवान के निकट आ गए, उनमें ब्रह्मा जी, इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे और उनके साथ साथ बड़े बड़े साधु पुरुष एवं पितृलोक, सिद्धलोक, विद्याधर लोक तथा नागलोक के निवासी भी थे। वहीं सारे मनु तथा अन्य लोगों के प्रजापति भी पहुंच गए। अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, वेताल, किम पुरुष लोक के वासी था विष्णु के पार्षद सुनंदन एवं कुमुद आदि पहुंच गए। ये सभी भगवान के निकट आए जो अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। इन सबों ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुतियां की। तो इस प्रकार से स्तुति प्रारंभ हुई। प्रथम स्तुति किए हैं ब्रह्मा जी, जो मंगलवार को आप लोगों ने सुना, मैं पढ़ देता हूं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अनंत हैं और आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं होते। आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन तो भी आप अव्यय बने रहते हैं। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। शिव जी ने कहा, कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकश्यप मारा जा चुका है, हे भक्तवत्सल प्रभु, कृपा करके उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। तो भगवान इस धराधाम पर प्रहलाद महाराज का रक्षा करने के लिए आए हुए हैं। प्रहलाद महाराज के चलते भगवान के इस रूप का दर्शन हुआ, जिस रूप को पहले कोई नहीं देखा था। सुखदेव गोस्वामी को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा है यहां पर कि श्लोक संख्या कौन है, वो सत्यम बुद्धात, हाँ, कहते हैं, व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्यताम अदृश्यताम, जिसको किसी ने नहीं देखा था, अद्भुत रूप उद्वहम, भगवान अद्भुत रूप धारण किए हैं, जिसको पहले कभी ने नहीं देखा था। अस्तम्भे सभायाम न मृगम न मानुषम, भगवान के इस रूप को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन प्रहलाद महाराज का भक्ति इस रूप को दिखा दिया। हिरण्यकश्यप तपस्या कर करके ब्रह्मा जी से ऐसा ही कुछ वरदान मांगा था, लेकिन यदि प्रहलाद महाराज का वो चेला बन गया होता, उनका बात मान लिया, तो भगवान इस रूप में नहीं आते। हिरण्यकश्यप के ब्रह्मा जी का वरदान होने के बावजूद ही भगवान नहीं आते, लेकिन प्रहलाद महाराज के चलते भगवान आए। प्रहलाद महाराज के चलते हम लोग भगवान नरसिंह देव का यह स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। प्रहलाद महाराज की जय। तो क्रेडिट प्रहलाद महाराज देता है। आज हम लोग प्रत्येक दिन नरसिंह वंदना करते हैं, इसके कारण है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज के चलते भगवान का यह रूप आया, और इस प्रहलाद महाराज के चलते ही हिरण्यकश्यप भी नरसिंह भगवान का दर्शन कर पाया, लेकिन दुख की बात कि वो समझ नहीं पाया कि भगवान है, या समझा भी लेकिन भगवान का इच्छा पूरा करने के लिए लड़ाई किया। प्रहलाद महाराज के चलते ही जो ब्रह्मा जी भगवान को हिरण्यकश्यप को वरदान दिए थे, वही ब्रह्मा जी भगवान के इस रूप को नहीं देखे थे, और वे आज इस रूप का प्रार्थना करते हैं। नरसिंह भगवान का लोक है वैकुंठ धाम में, लेकिन वहां पर चतुर्भुज रूप में है, इस रूप में नहीं है। यह जो रूप है यहीं पर आया हुआ है। तो ब्रह्मा जी भी इसको प्रथम बार देखे हैं, इस रूप को। अब सब लोग अपने अपने अनुसार देख रहे हैं, लेकिन क्रेडिट जाता है प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी के चलते भगवान के इस रूप का दर्शन सब लोग किए। भगवान के सामने सब लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना एक भक्ति है, स्तुति करना एक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदन। वंदनम करना, वंदन करना यानी प्रणाम करना। यदि हम लोगों में कृष्ण भावना का प्रभाव जितना अच्छा होगा, जो जितना कृष्ण भावना भावित होगा, वो उस रूप में भगवान को प्रणाम कर सकता है अपने रियलाइजेशन के अनुसार। जैसा रियलाइजेशन होगा उसके अनुसार वो भगवान को प्रणाम करेगा। यदि हम लोगों में कोई रियलाइजेशन नहीं है तो इन महाजनों के द्वारा जो स्तुति की गई है भगवान के प्रति, उन स्तुतियों को याद कर करके और भगवान के सामने प्रणाम करना चाहिए। अरे और कुछ भी मालूम नहीं है तो भगवान के सामने आकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके द्वारा, महामंत्र के द्वारा भगवान को प्रणाम कीजिए किसी न किसी रूप में। लेकिन दुख की बात है, आजकल देखने को मिलता है कि जब दर्शनार्थी खुलता है तो कुछ भक्त लोग शॉपिंग मॉल में जप करते हैं बैठ करके, और देखते हैं किताब क्या है, उधर गिफ्ट शॉप में क्या है, ये सब देखते रहते हैं। ब्रह्मा जी और भगवान शिव उस शॉपिंग मॉल में नहीं बैठे थे, वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे। अरे जिन भगवान के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सामने आ गए हैं, इसका मतलब हम समझते हैं कि पत्थर की मूर्ति है, भगवान नहीं है। यदि भगवान इनको समझेंगे तो माला को वहीं छोड़ करके यहां आएंगे दर्शन करने के लिए, ना कि माला। पता नहीं नया नया टेक्निक कहां से आ रहा है, पहले जमाने में ऐसा नहीं था। हम लोगों के जमाने में मंगला आरती हो दर्शन, क्या लक्ष्मी नारायण, मंगला आरती हो दर्शन भाग करके आते थे भगवान के आने से पहले, न कि माला जप रहे हैं। कुछ और देखने में आ रहा है कि मंगला आरती में कुछ भक्त लोग पीछे बढ़कर माला जपते हैं, ये सब ठीक नहीं है। ये सब मेंटल कंकक्शन है, ये इमोशन हो सकता है, डिवोशन नहीं है। केवल इमोशन है भक्तों का, शास्त्र नहीं कहता है, साधु लोग नहीं कहते हैं, गुरु जी नहीं कहे हैं, केवल हम सोचते हैं। कहां है मेरे वाला, मैं छोड़ता हूं यहीं पर। कहते नहीं पूरा करूं तब आऊंगा, अरे छोड़ दो वहीं पर, कोई बात नहीं, क्या तकलीफ है, फिर से शुरू करो, नरक में थोड़े जाओगे, फिर शुरू करो। कहते नहीं पूरा करके तब आऊंगा, ये कभी पूरा नहीं होगा, ये भावना बनी रहेगी तो। अरे उसको बोलो कुर्सी गिर जाएगा, वो भी गिर जाएगा, इधर आओ इधर आओ इधर, तुम भी इधर आओ। हमारे तीन पहलवान हैं मंदिर में, पुरुष भूषण एक ए और अपना मदन, बैठो इधर, ज्यादा तुम्हारा भार है कुर्सी गिर जाएगी फिर क्या होगा, शुरू हो जाएगा। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं, प्रार्थना भगवान के सामने करनी चाहिए प्रत्येक दिन। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया स्तुति है, ये प्रार्थना करो ना, क्या तकलीफ है। वेणुम कुणंदम रविंद दलायताक्षम बराहामतम समस्ताम्बज सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सोहम गोविंदमादि पुरुषम तमाम, ये प्रार्थना करो। ये क्यों करने का कि दर्शनार्थी खुल रहा है और पीछे उधर जप कर रहे हैं, ये नया नौटंगी क्यों शुरू करने का। ये वे लोग करते हैं जैसे जैसे नया विवाह होता है ना, तो नया बहू घर में आती है तो सास को 10 बार पैर छूकर प्रणाम करती है और बाद में सास को चप्पल मारने लगती है। तो नौसुखिया लोग ऐसा करते हैं, नया नया लोग आए हुए हैं, बाद में जब भी नहीं हो पाएगा। तो ये सब बकवास बंद करना चाहिए और आकर के दर्शन आरती हो मंगला आरती हो, आओ सामने नाचो गाओ, नाचने गाने से सब स्वस्थ रहेगा। लेकिन दुख की बात है कि आजकल हम शास्त्र साधु का बात नहीं सुनते हैं, डॉक्टरों का बात सुनते हैं। मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, परसों हमारा काउंसिल मीटिंग हो रहा था तो ये बात मैं काउंसिल मीटिंग में सुना। एक हमारे काउंसिल मेंबर साउथ इंडिया गए थे डॉक्टर के पास, राम रूप प्रभु, वो डॉक्टर के पास गए थे उनको क्या तकलीफ है, इन्हें स्वास्थ्य का तकलीफ है, वो शुगर है ज्यादा और सब तकलीफ है। तो डॉक्टर बोला कि महाराज आप लोगों को ये कोई तकलीफ नहीं है, आप नाचो गाओ सब तकलीफ दूर हो जाएगा। वो डॉक्टर बोला, और तब से राम रूप पुरोहित संध्या आरती में आना शुरू कर दिए। मैं आज पूछा तो मैं प्रमाण, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, थैंक टू राम रूप प्रभु, उनके चलते पता चला। जब डॉक्टर बोलता है तो हम स्वीकार करते हैं, डॉक्टर नहीं बोला साधु बोलते हैं शास्त्र बोलता है बकते रहते हैं, कोई बात नहीं। फिर डायबिटीज कैसे हो गई वो भी पूछे, तो डॉक्टर बोला कि आप हरे कृष्ण वाले भक्तों को इतना प्रसाद मिलता है फिर भी खाने के लिए आप लोग दौड़ते रहते हो, मन में खूब बना लिए खाना है खाना है खाना है, खाते उतना ही जो पेट चाहिए, लेकिन मन में भावना बहुत ज्यादा है इसलिए डायबिटीज हो रही है आप लोगों को। तो मन से भावना निकाल दो, राइट, यही बात है ना, तुम्हारा तो मन से भावना निकाल दो और आओ नाचो गाओ, बी हैप्पी। प्रभुपाद सेड चांट डांस एंड बी हैप्पी। मैं कहता हूं कि हमारे नए भक्त आज बड़े सौभाग्यशाली हैं, बेचारे नाचते हैं कुर्ता इनका गीला हो जाता है, एक किलो एक लीटर पानी निकलता है, हमेशा रखना है ना कि पीला कपड़ा पहना तो नाचने बाद लाल कपड़ा से परमहंस हो गया बड़ा हो गया, वही तकलीफ होता है। जो हमेशा नाचे गाएगा भगवान के सामने, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए नाचो, भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचो, और यही भक्ति है, भगवान के सामने नाचना, भगवान के सामने गाना। हमें कुछ लोग मंगल आरती में जप करते हैं, अरे नाचो गाओ ये सब क्या करने का, नौटंकी नया नया चीज, ये सब बंद करो, ये ठीक नहीं है। भगवान श्री वहां माला जप नहीं कर रहे थे, वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना करना चाहिए हम लोगों को। अब इस श्लोक में भगवान शिव पर देखिए, महाजन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ब्रह्मा जी महाजन हैं, भगवान शिव महाजन हैं। जब भगवान शिव देखे भगवान के गुस्सा को तो भगवान शिव हंस रहे थे। जैसे मान लो कि राधा रमण महाराज आए हैं, अब क्लास खत्म हुआ, दरी आप लोग हटा दिए, अब राधा रमण महाराज झाड़ू लेकर के झाड़ू मारना शुरू करें, तो ये नया भक्त खड़ा होकर देखेगा कि महाराज आप क्या कर रहे हो, ये हमारा काम है, झाड़ू दे दीजिए झाड़ू दे दीजिए, महाराज से झाड़ू ले, क्या हनुमान बात ही है ना, महाराज से झाड़ू लेकर, महाराज आप मत करो हमारा काम है, आप मत करो हमको करने दो। भगवान शिव वही बात कह रहे हैं कि भगवान आप क्या कर रहे हो, ये गुस्सा कर रहे हो, ये आपका काम नहीं है, ये तो मेरा काम है। कहते हैं कोप कालो जुगांत ते, भगवान आप जो एक कोप दिखा रहे हैं अभी इसका समय नहीं आया है, इतना गुस्सा, ये आपका गुस्सा तो ऐसा लग रहा है जो कि जुग को अंत कर देगा, प्रलय कर देगा, या ऐसी गुस्सा तब आती है जो प्रलय का समय होता है, क्योंकि भगवान शिव को एक एक्सपीरियंस है, वे देख रहे हैं समझ रहे हैं कि इस गुस्सा में क्या है। ब्रह्मा जी को एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि संहार काम उनका नहीं है ना, संहार काम भगवान शिव को है, और इसीलिए उनका एक नाम है भैरव। प्रभुपाद तत्पाद में कहते हैं काल का अर्थ है शिव जी, ता कोप का अर्थ है भगवान का कोप। तो भगवान का जो कोप है, भगवान का जो क्रोध है, वे हैं भगवान शिव। भगवान शिव भगवान के लिए बहुत काम करते हैं, उदाहरण के लिए विष पान करना, ये विष पान कर जब पुतना आई थी भगवान को विष पान कराने के लिए, तो भगवान शिव को बुलाए कि आप आइए आपका काम हमारा काम नहीं है, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं, थोड़े विष पीने आया हूं, आप आकर पीजिए। तो भगवान शिव आकर के पुतना का विष पान किए थे, क्योंकि विष पान करना भगवान शिव का काम है। इसीलिए समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो भगवान शिव स्वीकार, उनका काम है विष पान करना, गुस्सा करना भगवान शिव काम है। इसलिए उनका नाम है रुद्र। ये ब्रह्मा जी इतना सृष्टि किए, उनके समय से बाहर हो रहा था कि इतना ही सब बढ़ जाएंगे, भूत पिशाच सब बढ़ जाएंगे, इतना फिर होगा क्या, इतने प्राणी हो या जगह नहीं मिल पाएगा, उन्हें उत्तर नहीं मिल पा रहा था और बड़े गुस्सा में थे। उसे बुम आ गया, एक छोटा मांस का टुकड़ा बाहर निकला और लगा रोने और वे हुए रुद्र। तो गुस्सा के चलते भगवान शिव प्रकट हुए रुद्र के रूप में। रुद्र का मतलब गुस्सा। प्रभुपाद तत्पर्ज तत्पर्ज में कहते हैं भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं। इस सृष्टि में तीन प्रकरण हैं, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। ब्रह्मा के जी के रूप में भगवान सृष्टि करते हैं, विष्णु के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसका पालन करते हैं और शिव जी के रूप में इसका संहार करते हैं। तो कोप कालो ये भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। तो भगवान शिव समझ रहे हैं कि ये मेरा काम है, भगवान कर रहे हैं। कोप कालो जुगांत ते, ये जो कोप है, जो गुस्सा है, आपका ही है प्रभु, लेकिन आपने ये काम मुझे दिया है। और ऐसा गुस्सा कब होता है, जब युग का अंत होता है, यानी प्रलय के समय। तो मानो भगवान कहते हैं कि लेकिन तो आपको हिरण्यकश्यप को मार देना चाहिए, जब आप इतना बड़ा बात कह रहे हो कि ये गुस्सा करना आपका काम है, तो आपने मारा क्यों नहीं हिरण्यकश्यप को, आप भी तो जानते थे हिरण्यकश्यप क्या कर रहा है। तब मानो भगवान शिव जी कहते हैं ठीक है, आपने ये रूप धारण कर लिया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, लेकिन अब तो मारा गया, अब तो गया, अब तो शांत हो जाइए। भगवान को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं शिव जी, पहले हंस कर कह रहे हैं प्रभु ये गुस्सा आप में शोभा नहीं दे रहा है, इसको त्यागिए, ये तो मेरा काम है। और इस प्रकार का गुस्सा, ये तो गुस्सा प्रलय के समय होता है, मैं जानता हूं इस बात को, ये छोड़ दीजिए। तो मानो भगवान कहते नहीं नहीं था, मरता कौन, आपने तो मारा नहीं, तो ठीक है, तो मर गया ना, अब छोड़िए। और वो भी इतना बड़ा गुस्सा आप कर रहे हो मच्छर को मारने के लिए, इतना बड़ा तलवार लेकर घुमा रहे हो मच्छर को मारने के लिए है? कहते हैं अल्पकह हतो अयम असुरो, अल्पकह एक मच्छर को मारने के लिए इतना बड़ा गुस्सा सभा थोड़े था आप में, अच्छा नहीं करो, छोड़ दीजिए, ऐसा काम नहीं है। उतना ही न कहते हैं, अरे जिसके लिए आप इतना गुस्सा किए हैं वो तो गया काम से, वो तो मर गया, लेकिन उसका बेटा बेचारा, तस्तुतम पाही उपाश्रितम, उसका बेटा जो प्रहलाद है आप उसका रक्षा करें प्रभु। उपाश्रितम, श्रितम मतलब खींचना, जो आपके नदी का उप मतलब नदीक, फिर मतलब खींचते हुए, जो आपके नदीक आकर के खड़ा है या जो आपका शरणागत वत्सल है उसका आप रक्षा करें, उस पर आप कृपा करें। भगवान शरणागत वत्सल, जो आपके शरण में आ गया है उसका रक्षा करें। गतो मुकुंद शरणम शरण्यम, शरण लेने योग भगवान है। तो इसलिए स्रोतो भावेन हमें चाहिए भगवान का ही शरण लेना, भगवान के शरण में रहना चाहिए। और जो भगवान के शरण में रहता है भगवान उसका रक्षा अवश्य करते हैं। अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, पुरुषभूषण प्रसाद है, चिंता मत करो। अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, इस वस्तु पर विश्वास होना चाहिए। आज लोगों में भगवान में विश्वास है लेकिन श्रद्धा की बड़ी कमी है। नहीं, लोगों में श्रद्धा है, विश्वास की कमी है। आज लोगों में श्रद्धा है, अगर मुड़ी मारते हैं भगवान के समान, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है। यदि मुड्डी मारकर गए, बेटा मर गया, फिर भगवान कौन पूजा करेगा? अब आज के बाद नहीं, विश्वास नहीं। यदि विश्वास होता तो समझेंगे भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। तो आज लोगों में श्रद्धा है लेकिन विश्वास नहीं है। हम लोगों में अभी तक भगवान में विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल श्रद्धा उत्पन्न हुआ है। यदि कोई कठिनाई मंदिर में, मंदिर छोड़ते हैं चलो, प्रेसिडेंट परेशान करता है, टेम्पल कमांडर परेशान करता है, चलो मंदिर छोड़ते हैं। प्रहलाद महाराज कभी ऐसा सोचे कि हमको हाथी के पैर तले दबाया गया, विष दिया गया, अब भक्ति नहीं करेंगे? नहीं, उनमें विश्वास था। तो हम लोग श्रद्धावान हैं, हम लोग भक्ति के अधिकारी हैं। श्रद्धावान जौन भक्ति अधिकारी, हम भक्ति के अधिकारी हैं लेकिन भक्त नहीं बने हैं। भक्त वह कहलाता है जिसमें विश्वास हो, और विश्वास का परिचय है कि अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण हमेशा हमारा रक्षा करेंगे, यही है शरणागति। शरणागति के 6 अंगों में से 1 अंग है कि कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज को यह विश्वास था कि कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे, और उनके विश्वास का गुणानुवाद कर रहे हैं भगवान शिव यह कर करके, तत्सुतम पाहि उपसृजम उपसृतम। ये प्रहलाद कोई ऑर्डिनरी नहीं भगवान, इसमें आपके प्रति अटूट विश्वास है, आपका शरणागत भक्त है। उपसृतम भक्तम, ये आपका शरणागत भक्त है। और आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? कहते हैं भक्त वत्सल, आप भक्त वत्सल हैं। ये शरणागत भक्त और आप भक्त वत्सल, फिर इस दो के बीच में गुस्सा किस लिए? तो ऑल टूगेदर भगवान शिव भगवान से उनके गुस्सा को परित्याग करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और 3 कारण दिए हैं यहां पर। पहला कारण यह है कि अभी प्रलय का समय नहीं है, तो असमय में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, ये पहला कारण। ऐसा गुस्सा होता है तब जब प्रलय करना होता है, मुझे इसका एक्सपीरियंस है, मैं करता हूं ऐसा गुस्सा। दूसरा कारण बताते हैं, ठीक है मान लीजिए गुस्सा कर भी दिए, तो जिसके लिए आप गुस्सा किए थे वो तो गया काम से, अब हिरण्यकश्यप मर गया तो त्याग दीजिए अब। और तीसरा कारण बता रहे हैं कि यह आपका शरणागत है, कितना टेस्ट नहीं पास किया है यह, इसमें अटूट विश्वास है आपके प्रति भगवान, यह आपका फर्स्ट क्लास का भक्त है, और आप भक्त वत्सल हैं। तो भक्त और भक्त वत्सल के बीच में गुस्सा कहां, वहां तो प्रेम होना चाहिए, इसलिए आप इस गुस्सा को त्याग दीजिए। तो 3 कारण भगवान शिव बताए हैं यहां पर भगवान को उनके गुस्सा को शांत करने के लिए। सब लोग प्रयास किए, खूब प्रार्थना किए, यहां पर टेम्पल प्रेसिडेंट चाहे वाइस प्रेसिडेंट या टेम्पल कमांडर को खूब गुस्सा हो किसी भगत पर, और जाकर वो सष्टांग दंडवत प्रणाम कर ले, थोड़ा गुस्सा कम होगा, ठीक है ना। 2-4 गुणगान कर दे उनका, कह रही प्रभु आप तो बड़े महान हो, आप ऐसे हो ऐसे हो, पूरा गुस्सा और कम हो जाएगा। और कुछ गिफ्ट ला करके दे दे तो सब गुस्सा खत्म हो गया। लेकिन भगवान नरसिंह देव का, ये इतने बड़े बड़े महाजन ब्रह्मा जी शिव इंद्र चंद्र सब कौन कौन नहीं प्रार्थना किए, इसके बाद इंद्र किए हैं, उसके बाद ऋषि लोग किए हैं, उसके बाद पितर लोग किए हैं, उसके बाद सिद्ध विद्याधर नाग मनु प्रजापति गंधर्व चारण यक्ष किम पुरुष वैतालिका किन्नर और विष्णु पार्षद सब प्रणाम कर लिए, लेकिन भगवान टस से मस नहीं हुए, उनका गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हुआ, बहुत ऊपर चढ़ गया था गुस्सा। तब ब्रह्मा जी वगैरह लक्ष्मी जी से कहे कि आप ही शायद मना सकती हैं, आपके प्रभु हैं, आप ही शायद मना सकती हैं। लक्ष्मी जी भी कांपने लगी कि ऐसा गुस्सा मैं कभी देखी ही नहीं हूं, ये हमारे लिए अनजान जैसा लग रहा है। वो भी भयभीत हो गई। तब ब्रह्मादि प्रहलाद जी से प्रार्थना किए कि हे प्रहलाद, ये प्रभु का गुस्सा तुम्हारे चलते हुए है, तुम ही सर्व कारण कारण हो, तुम ही सबके कारण, तुम ही कुछ करो। और प्रहलाद जी आंख बंद करके सष्टांग दंडवत प्रणाम किए। और बाद में जब उठे, भगवान उनको उठाए, उनको चाटने लगे, और प्रहलाद के चलते गुस्सा शांत हुआ। तो भगवान प्रहलाद के चलते आए, भगवान प्रहलाद के लिए गुस्सा किए, और भगवान का गुस्सा प्रहलाद से शांत हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कमेंट? महाराज, महाराज को माइक दो। बताइए।
ठीक है, आप बढ़िया से बता रहे थे। शिव जी कहते हैं इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इनसिग्निफिकेंट वो जीव है। आपने अच्छा उदाहरण दिया, आपके घर में मच्छर धुकता है तो आप राइफल नहीं उठा लेते हैं। मच्छर प्रवेश कर गया घर में तो आप राइफल नहीं उठा लेते हैं, उसके लिए तो गमछा से ऐसे हटा देंगे तो हो जाए, तो इतना क्रोध नहीं कर। अच्छा उदाहरण प्रभु जी दे रहे, कह रहे थे ना कि तलवार लेने का चला है कि मच्छर घुस गया घर में तो राइफल नहीं उठा लेते हैं आप लोग ना, तो भगवान को बता रहे थे आप तो राइफल उठा लिए मच्छर को मारने के लिए। अल्पकह इनसिग्निफिकेंट। धन्यवाद, बहुत बढ़िया क्लास आपका। हरे सर,
हनुमान जी लंका से आ गए लगता है, हनुमान जी के प्रभु से।
हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न यह है, आप बताएं कि बहू जब पहले आते हैं तो सास की पैर छूती है, और बहू जब घर में पहले आते हैं तो सास के पैर छूती है,
सेवा खूब करती है,
और बाद में चप्पल मारते हैं, ऐसा क्यों?
अब उन बहुओं से जाकर के पूछिए, हम क्या बताएंगे। ये जो नया नया में दिखावा ज्यादा होता है उसे कहते हैं इमोशन। राधा वर्णन बताएंगे, हम लोगों को भी जब नया नया भगत बने थे तो बहुत इमोशन था। हम तो बिहार में भगत बने थे, इस काम में बाद में आए थे। गर्मी का चिलचिलाता धूप था दोपहरी का, पैर में जूता नहीं था, गेहूं काटा हुआ था, और काटा हुआ जो होता है उसमें बहुत नुकीलापन होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग खूब दौड़ते थे, हम में ज्यादा इमोशन था, राधा रमण प्रभु थोड़ा कम था, महाराज मिल गया हमें थोड़ा ज्यादा था। एक बार राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, हम लोग बनारस में थे, मैं अपना इमोशन का वर्णन कर रहा हूं, दो उदाहरण दूंगा। अब थे उस समय 80 पर रुके हुए थे हम लोग, आप कहीं वहां रुके हुए थे। तो उस समय बरसात का समय था, गंगा जी में खूब बाढ़ आया था, और चैतन्य चरितामृत कथा हो रही थी, और हम लोग गंगा जी के पास गए, और महाराज वही कथा कह रहे थे, कहे कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु गंगा जी को देखे तो जमुना समझकर कूद पड़े, इतना सुनना था कि हम लोग कूद पड़े। खूब बाढ़ आया हुआ था, पानी में बहुत प्रभाव था, तैरना जानते थे निकल गए, लेकिन कूद पड़े। ये कहलाता है इमोशन, मरने का भी डर नहीं होता है। एक बार हम लोग वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे और चीर घाट पर कथा हुआ, जहां पर गोपियों का चीर बांधा अभी भी पेड़ है वहां पर, और वहां पर वो घाट है, और वहां पर बहुत कीचड़ था, बहुत कीचड़ था, और उसमें सुअर विश्राम कर रही थी। तो महाराज कह दिए कि इन सुअरों का कितना सौभाग्य है कि वृंदावन में ये आनंद उठा रहे, इतना कहना था कि भक्त लोग कूद पड़े उसी कीचड़ में। तो अब नहीं कूदेंगे, उस समय कूद पड़े। तो ये कहलाता है इमोशन। इमोशन अलग होता है, डिवोशन अलग होता है। तो ये इमोशन मात्र है, डिवोशन नहीं है। डिवोशन यह है कि भगवान के सामने आए, डिवोशन यह है कि साधु शास्त्र और गुरु का आज्ञा पालन करें। इमोशन में हम अपने अनुसार करते हैं, अपने अनुसार किया हुआ भक्ति भक्ति नहीं कहलाता है। बहुत लोग संसार इमोशन कहते हैं कि अब है ना हम महाराज अपने अनुसार कर लेते हैं, अपने अनुसार किया गया भक्ति भक्ति नहीं कहलाता है। कृष्णा अनुशीलनम, जिसे कृष्ण अनुशीलित करें। सर वो कैसे है वो भक्ति उत्तमा, अन्याभिलाषा शून्य ज्ञान कर्माद अनावृत। ये भी एक अभिलाषा ही है कि सल हमला जब कर लू पहले बाद में दर्शन करने आऊंगा, ये मेंटल अभिलाषा है। शास्त्र नहीं कहता है, सब चीज समय से होना चाहिए, समय से नहीं होगा तो पछताना पड़ेगा। टाइम पास पास फॉर एवर, जो समय गया वो फिर नहीं आएगा। ठीक है, यस आगे आ जाओ। मदन प्रश्न है तुम्हारा, माइक तुमको दे रहे थे। अरे यही करो ना, फिर माइक आगे आना पड़ेगा ना। हरादास पूछ रहे हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण माखन मिश्री खाते हैं, तो पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई थी, तो क्या भगवान श्री कृष्ण माखन मिश्री खाते तो वो विष कैसे ले लिए?
मैं कहा ना कि आचार्य जी और कहते हैं उन्होंने विष नहीं पान किया, भगवान शिव को बुला दिए कि विपत्ति आ गई, अभी छह दिन का हुआ दूध भी नहीं पिया माँ का, ये तो विष पिलाने आ गई, आप पी लो। तो भगवान ने टार लिया, शिव जी कह दिया आप पी लो। तो भगवान शिव पान किए थे विष को, भगवान नहीं पान किए थे, ये काम भगवान शिव का है। दो भाई इनको परपट दे रहे हैं। हाँ
कृष्ण प्रभु जी, आप बोले कि भगवान ने कृष्ण ने शिव जी को बोले तुम थोड़ा सा पान कर लो, ये क्या भागवत का वर्णन है क्या?
आचार्यों ने कहा है, जो आचार्य गण समझते हैं वे कहते हैं, वे समझते हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि भगवान का उस समय भगवान ने क्या किया। हम तो सुखदेव गोस्वामी जो कहे हैं कि भगवान ने पूतना का समय कम था ना, सुखदेव गोस्वामी सातवें दिन था ना, तो फटाफट कहते गए, और परीक्षित महाराज समझ रहे थे, लेकिन हम तो परीक्षित नहीं है, इसीलिए हम लोगों को समझाने के लिए, सुखदेव जी के बात को समझाने के लिए आचार्यगण समझाए हैं। तो आचार्यों के कमेंट्री में वर्णन किया गया, श्री बल्लभाचार्य कमेंट्री में ये वर्णन किया गया है कि भगवान शिव को बुलाए पान करने के लिए। हरादास
हरे कृष्ण, जैसे व्यक्ति को भय लगना नहीं चाहिए, यहाँ बताया गया भयात कंसो, कौन से भी भय से भगवान को चिंतन किया,
बिल्कुल।
और इधर भक्तों को भय लगना नहीं चाहिए, दूसरा पॉइंट भय नहीं रहेगा तो अरे माया में चल जाएगा, तो भक्ति करना चाहिए। यहाँ एक बिल्कुल डरने का क्या है, भक्ति करना है, ये थोड़ा बताइए क्या क्या है।
ये हमारे यहाँ बिहार में कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, या तो असुर बनो या भक्त बनो। जब असुर बनना है तो भय ठीक है, जैसे कंस को था, और भक्त बनना है तो प्रहलाद बनो, निर्भय बन करके रहो, दो नाव पर चढ़ोगे मर जाओगे कहीं के नहीं जाओगे। डिसाइड करो क्या करना चाहते हो, असुर बनना चाहते बनो असुर। बल्कि नारद जी कहते हैं कि जो असुर भाव जो है हमारे विचार से, नारद जी अपना मत दिए हैं कि हमारे अनुसार ये द्वेष भाव है वो बड़ा श्रेष्ठ है, भक्ति भाव से द्वेष भाव श्रेष्ठ है, क्योंकि जो असुर भाव रहता है वो नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, पानी पिया अरे भगवान है यहाँ पर बैठा, भगवान यहाँ पर है, कंस को यही हो रहा था ना, सर भगवान दर्शन कर रहा था। तो नारद जी कहते हैं हमारे अनुसार वो अच्छा है, क्योंकि निरंतर भगवान का चिंतन होता है, भक्त में कभी काल हो जाते हैं कभी भगवान को, लेकिन असुर लोग याद रखते हैं। तो डिसाइड हमें करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आजकल असुर बनना उतना आसान नहीं है, भक्त बनना आसान है। असुर बनने में बहुत काम करना पड़ेगा, इतना कि मर जाओगे। पहले के असुर इतने बड़े बड़े थे, हिरण्यकश्यपु एक पैर पर खड़ा हुआ बिना खाए पिए, आपको हम खड़ा करा दें, बिना खाए पिए दो दिन खड़ा रहोगे? नहीं रह जाओगे, असुर नहीं बन सकते हैं। आप पढ़िए असुरों का क्वालिफिकेशन, रावण का, हिरण्यकश्यपु का, ये लोग क्या क्या किए हैं। हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो असुर नहीं बन सकते हैं, लेकिन भक्त कोई बन सकता है। भक्त मतलब बालक, छोटा बालक बन जा सकते हो। बड़ा बनने में हजार टेंशन होता है, झूठ बोलना पड़ता है, साथ बोलना क्या करना पड़ता है, बालक निश्चल होते हैं। तो भक्त मतलब बालक, बालक बनकर रहो, दैट इज बेटर। यस, आज हमारे भगत प्रश्न नहीं कर रहे क्योंकि इसका असली चीज इधर आ गया, इसलिए पहले हाथ उठाता है।
हरे कृष्णा। खुद जी आप बताए कि श्रद्धा के विषय में, तो जैसे बताए श्रद्धावान जना है भक्ति अधिकारी, तो उसमें कहते हैं उत्तम मध्यम श्रद्धा कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, तो दूसरे में कहते हैं कि जहार कोमल श्रद्धा श्री कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे से भक्त हो वो उत्तम। तो हमें श्रद्धा आवश्यक है या विश्वास आवश्यक है?
श्रद्धा जो है वो इनबिल्ड सिस्टम है, सब में श्रद्धा है, जगाई मधाई में श्रद्धा। जब श्रद्धा नहीं होगा तो भक्ति कोई करेगा नहीं। क्वालिफिकेशन है भक्ति का अधिकारी होने का श्रद्धा, ये क्वालिफिकेशन। कोई भक्त बन सकता है, भक्ति कर सकता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? श्रद्धा है। तो असुर भी भक्त बन सकते हैं, लेकिन श्रद्धा है। अब श्रद्धा का पालन करना है, कोमल श्रद्धा वो कनिष्ठ भक्त, थोड़ा प्रगाढ़ हुआ श्रद्धा तो मध्यम, और वही श्रद्धा निपुण हो गया यानी विश्वास के रूप में परिवर्तन हो गया। तो विश्वास में श्रद्धा ऑलरेडी है, लेकिन श्रद्धा में विश्वास है ये कोई नहीं कर सकता है। तो शरणागति का विधि है विश्वास, अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन।
तो प्रभु जी श्रद्धा से ही हम विश्वास तक पहुंच सकते हैं।
श्रद्धा मैं कहता हूं ना कि इनबिल्ड सिस्टम है, जैसे आप कंप्यूटर खरीदो तो उसमें हार्ड डिस्क होता है ना, कुछ भी टाइप करो उसमें हो जाएगा। वो जब हार्ड डिस्क नहीं लगा तो क्या टाइप करोगे? तो इन बिल्ड सिस्टम श्रद्धा, श्रद्धा सब में है, एक भक्तों में ही है, असुरों में श्रद्धा है, इसे प्रचार करते हैं। जगाई मनाई में श्रद्धा थी, इसलिए महाप्रभु का कृपा प्राप्त की है। हम लोग गीता बांटने जाते हैं, श्रद्धा ना होता तो लोग गीता क्यों खरीदेंगे? श्रद्धा तो ऑटोमेटिकली है, श्रद्धा देने की जरूरत नहीं है। हम भक्ति प्रदान करते हैं और श्रद्धा के स्तर से भक्ति ऊपर उठता है, और जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे श्रद्धा प्रगाढ़ होगा, और जब श्रद्धा प्रगाढ़ होगा तो अब विश्वास के रूप में परिणित हो जाएगा। जैसे गन्ना में मिठास है लेकिन मिठास गुड़ नहीं है, गन्ना जो है वो मीठा होता है, उसका रस मीठा होता है, लेकिन उसे गुड़ नहीं कर सकते हो, उसको गर्म करो, जो अनवांटेड थी उसे बाहर निकालो, फिर और गर्म करो और गर्म करो, फिर देखो थोड़ा उसमें वो निकलने लगता है, थोड़ा वो इलास्टिक दिखाई पड़ता है, तो उसको उतारो, ठंडा करो, बाद में जमेगा, बाद में प्रोसेस है, लेकिन मिठास है, शुरू में भी है और अंत में भी है, तो श्रद्धा रहेगा। और यस, असीम प्रभु को दीजिए माइक, असीम महाराज गाना शुरू करो अभी से। महाराज
भगवान अवतार जब लिए तो इसके पहले ये रूप में नहीं थे?
अदृश्यम रूपम, अद्भुतम अदृश्यम रूपम, न मृगम न मानुषम। वैकुंठ में नरसिंह भगवान है, नरसिंह लोक है, लेकिन वहां चतुर्भुज रूप में है, चैतन्य चैतन्य अस्त्र वर्णन किया गया।
और जैसे आपने कहा कि शिव जी ने विष पी लिया, तो दूध भगवान पिए क्या?
हाँ, हाफ पार्ट मैंने ही कहा था, ये बात सही कह रहे हैं, भगवान दूध पिए और शिव जी विष पी लिए, असीम प्रभु पूरा कर दिए। जैसे शिव जी और कृष्ण मिलकर के पुतना का वध किए, वैसे असीम और हम मिलकर के वो बात बता दिए आपको, दूध कृष्ण पिए और विष भगवान शिव पिए। यस ना, यार 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 सुंदर सुंदर।
जी दिस हिरण्यकश्यपु इतना गुस्सा करके प्रहलाद महाराज के ऊपर कि उनको मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हम सुनते हैं कि अगर कोई शिकारी भी है तो भी वो अपने जो बालक होता है उससे बहुत प्रेम करता है, कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों न हो। तो यहाँ पे सिर्फ प्रहलाद महाराज थोड़ा सा प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए इतना वो क्यों, उसका इतना जो एनिमी भाव था वो इतना कैसे हो गया?
देखिए, पहला नंबर तो हिरण्यकश्यपु अपने हाथ से प्रहलाद को मारना नहीं चाहता था। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के जो साम्राज्य था उसके नींव में सेंध डाल रहे थे। क्या उसको बोलते हैं, नींव में सेंध डालना, नींव जो था उसके साम्राज्य का उसको तोड़ रहे थे, उसका नींव फालसुड पर टिका हुआ था कि मैं भगवान हूं, मैं भोक्ता हूं। और प्रहलाद जी कह रहे तुम भोक्ता नहीं हो, भोक्ता भगवान विष्णु है, भगवान वे हैं, तो उसको ध्वस्त कर रहे थे। तो हिरण्यकश्यपु अपने बल से प्रहलाद को दबाना चाहता था, डरा करके, फटकार करके, डांट कर करके। उतना नहीं हुआ तो आप देखिए क्या क्या किया है, पहले शुरू किया फर्स्ट गियर से, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, टॉप गियर बाद में आया, जब होलिका से भी नहीं जल पाया प्रहलाद, तब अंत था, कह दिया था हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को कि अब तुम्हारा अंत आ गया है, लेकिन वास्तव में अंत तो हिरण्यकश्यपु का आया था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा था ना कि जो अंत होता है वही व्यक्ति से बकवास करता है, कहते मरता क्या नहीं करता, तो हिरण्यकश्यपु मरने वाला था, इसलिए प्रहलाद को मारने के लिए। और भगवान चाहते थे, नारद जात सब लोग चाहते थे जल्दी ये काम करे, जब तक से प्रहलाद को मारने नहीं हिरण्यकश्यपु आए भगवान नहीं आएंगे। भगवान चाहते तो भगवान रक्षा किए, जब पर्वत पर से गिराया गया भगवान रक्षा किए प्रहलाद जी को, सब प्रकार से रक्षा किए, लेकिन जब विष दिया गया तो भगवान शिव को बोले जाकर के आप एक रक्षा कर लीजिए, भगवान शिव आकर विष पान कर लिए, भगवान रक्षा किए। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु डायरेक्टली चैलेंज, उसके बाद कोई और नहीं था, तब भगवान आए, उसका मृत्यु उसके सिर पर सवार हो गया था। ऑलराइट, हरदास लास्ट क्वेश्चन। अरे तुम्हारा लास्ट, ठीक तुम्हारा लास्ट, मैं सोचा
अरे अलग क्वेश्चन है। ओ जैसे बोलते हैं जो भगवान को, जैसे अयोध्या में तृतीय युग में सब लोग भगवधाम गए, लेकिन जब तृतीय जो एंड में वो जो ब्राह्मण को कुत्ता था, कुत्ता को ब्राह्मण ने, एक ब्राह्मण ने मार दिया, तो कुत्ता जाके कंप्लेन किया, तो ब्राह्मण बोलता कि ठीक है क्या दंड दे उसको, कुत्ता दंड मनाओ। वो तो व्यक्ति एक और जन्म लिया तो भगवधाम चल जाएगा, वो फिर मठमंत बनेगा, फिर कुत्ता बनेगा, ऐसे कैसे हुआ थी वो जो स्टोरी है?
मैं प्रश्न समझा नहीं,
वो जैसे
स्टोरी मैं जानता हूँ, प्रश्न क्या है मैं समझा।
प्रश्न है कि तृतीय युग में हर एक व्यक्ति भगवान के धाम चले गए, तो भगवान का दर्शन करके, अरे राम अवतार में भगवान राम जी राजा थे, तो ब्राह्मण ने, एक ब्राह्मण ने कुत्ता को मार दिया था, कुत्ता देखे कंप्लेन किया, तो कुत्ता कंप्लेन करने के नाते फिर भगवान ने उसको पूछे तुमको क्या देना चाहिए, ना उसको ब्राह्मण बनाओ, मठ महंत बनाओ। तो कोई भी व्यक्ति दर्शन करेगा तो भगवधाम जाएगा, वो फिर महंत बनेगा, फिर कुत्ता बनेगा, ऐसे कैसे होगा राम का एरिया में?
मैं समझ रहा हूं, अब समझ गया हूं। ये सब भगवान की लीला है पहला नंबर। दूसरा नंबर अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ना है। भगवान ने दिखा रहे थे कर्म जो करेगा उसको फल भोगना पड़ेगा, और भगवान सबके प्रति दयालु थे। वे डिसीजन न देकर कुत्ता से पूछे, बताओ तुम ही बताओ इसका, तुमको यदि राजा बना दिया जाए तो क्या करना चाहिए इसको, तो कहा इनको मठाधीश बना दीजिए, प्रेसिडेंट बना दीजिए मंदिर का। हमारे भगवत कितना लड़ाई करते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, है ना, लड़ाई होता है ना प्रेसिडेंट बनने के लिए। कुत्ता बोला कि इनको प्रेसिडेंट बना दीजिए। एनीवे पता नहीं, मुझे उसका उत्तर मालूम नहीं है, भगवान की लीला थी। बधाई महाराज। लेकिन प्रश्न वही करना चाहिए जो क्लास में कहा जाए। अब गियर चेंज करने के लिए आप कह रहे हो, अब वो
ऐसे कुछ लोडेड क्वेश्चन होता है उसको तो किसी राइफल लोडेड लोडेड क्वेश्चन इसको कहते हैं। इसे कोई भी आंसर गलत होगा था, कोई भी आंसर ठीक होगा। और इतना ही कि मतलब कि वो कथन हमको इतना ही लेना है उस कथा से कि महंत होने पर अपराध होने की बहुत संभावना रहती है भगवान की सेवा।
भजन कम हो पाता है, टेंशन ज्यादा रहता है इत्यादि,
प्रेस्टिजियस और नहीं वो पद है, बहुत सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन की भावना आती है, पावर में रहने की इच्छा होती है, तो बहुत वो अच्छा सिचुएशन नहीं है, इसलिए कुत्ते उसको वह बना दिए। पनिशमेंट के रूप में किसी को मठाधीश, अच्छा शब्द का प्रयोग किया, मठ का अधीश, मठ के अधीश बनने पर बहुत सा होता है, अपराध होने की संभावना रहती है, सेवा को भी मैनिपुलेट करने का रहता है चांस, इसीलिए वो कुत्ते ने ही कह दिया कि इनको ब्राह्मण थे तो उनको मठाधीश बन। वह भी कुत्ता भी अपने पूर्व जन्म पूछता ऐसा ही काम किया था कि उसे कुत्ता बनना पड़ा था। यह भी कथा का
कुत्ता पहले वैसा ही कुछ काम किया था, कुत्ता बना था,
मठाधीश
एक्सपीरियंस था, वो मठाधीश था पहले,
मठाधीश ही था
जी। ओके, उधर लास्ट में
हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। वी सी हियर Lord Shiva is very philosophical in offering prayers to the Lord. Like we see in Bhagavatam, Brahmaji, Dhruva Maharaj, they're very philosophical while offering prayers along with expressing their emotions. But in our case, generally it happens, we express our emotions to the Lord. How important is to be philosophical in our prayers?
Prabhupada said, philosophy without devotion is mental speculation, and devotion without philosophy is sentiment. तो हम लोगों को न तो mental speculator बनना है न तो sentimental बनना है, हम लोगों को devotee बनना है। तो devotee का मतलब जिसमें philosophy और devotion दोनों हो, जो कि हम प्रहलाद महाराज के प्रार्थना में, ध्रुव महाराज के प्रार्थना में, भगवान शिव के प्रार्थना में ये देखने को मिलता है कि इन लोगों में डिवोशन भी था और फिलोसफी था। सिद्धांत बनिया चिते ना करो आलस, भक्तों को आलस नहीं, सिद्धांत समझना चाहिए और डिवोशन मतलब भाव होना चाहिए। ऑल राइट, दो भाई उनको, उनके चलते सब लोग प्रसाद के लिए वेटिंग कर रहे हैं। ऑन है, ऑन है, बोलो बोलो।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आप जो घुसा के बारे में बोले, ये तो सत्य युग से लेकर तृतीय द्वापर आज कलि युग तक तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, वो कम नहीं होता है। एक डॉक्टर ने बोला था ये चार पांच दिन के अंदर मेडिकल में, बोले ये लोग इतना गुस्सा करके आया वो डॉक्टर को मारने वाले था।
अच्छा,
बोला कलि युग में ज्यादा गुस्सा करते, फिर कौन ना भक्त लोग, जैसे शिव जी में उदाहरण दे रहा हूँ, शिव जी, और शिव जी इतना गुस्सा करके जो भस्मासुर को वध किया था, और हनुमान जी इतना गुस्सा किया जैसा लंका जला दिया। लेकिन ये तो सब गुस्सा के कारण से होता है ना, ये फिर भक्त ऐसे गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? अभी जैसा अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा रात को कोई संतरासवादी आएगा आपको मारने वाले आएगा, फिर आपको छोड़ेगा क्या नहीं छोड़ेगा? बोले नहीं तो मार के चला जाओ। ऐसा क्या करना पड़ेगा?
कलयुग में सब लोग मरे हुए हैं, मरा हुआ आदमी गुस्सा करता है? कलयुग में मरे हुए हैं, मरे हुए को नहीं मारना है। नित्यानंद प्रभु ने यही चेतन महाप्रभु से कहा, क्या मारोगे जगाई मधाई को, ये सब मरे हुए हैं, मरे हुए क्या मरना है?
इसी तो उद्धार,
इन लोगों का उद्धार करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। मरे लोगों का उद्धार करो, राम नाम सत्य है, हरे कृष्ण बोलो।
ये तो कलयुग का पाठ है, लेकिन जो त्रेता युग में हनुमान जो लंका जला दिया,
अरे भैया तो कलयुग में यही सोचो ना, काहे को आगे सोचते हो? अभी क्या सोचो, हरे कृष्ण का जप करो बस, और मत करो ज्यादा। ठीक है, अपना मोबाइल ले लो, अच्छा मोबाइल रखा है लेकिन फर्स्ट क्लास, अच्छा HTC, वाह। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय।